Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. అష్టోత్తర శత శ్రీమద్సి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాద్ శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బల్దేవ్ సుభద్ర మహారాణికి, శ్రీ శ్రీ నితాయ్ గౌర సుందర్ కి, శ్రీ శ్రీ రాధ మాధవ్ కి, సమవేద్ గౌర భక్త వృందకి నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిర అంధశ జ్ఞానాంజనశలాకయ దక్షిణమిలితంగేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వఫలాంగికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురుర్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహజన లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పదే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తత్ కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి విషవానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. పాంచాకల్పతరూపేశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ సతిగానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మేరీ ఆవాజ సునాయి దే రహీ సబ్ తక్. तो आज हम एक विशेष जो सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे. उस दिन भी मैंने उस हॉल प्रोग्राम में भगवान के जो परम नाम है उसके बारे में ग्लोरिफिकेशन का वर्णन किया था. तो उससे आगे ही जो ये कृष्ण नाम है वो हमें किस प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए. तो शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है. विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले थे तो उनको उन्होंने कई सारी शिक्षाएं दी और उन सारी शिक्षाओं को रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु या नेक्टर ऑफ डिवोशन उस बुक में कंपाइल करके सबके लिए उन्होंने प्रेजेंट किया. तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस 64 भक्ति के जो अंग हैं वो करने के लिए कहा या शिक्षा दी. तो भगवत भक्ति को परफॉर्म करना है तो वो 64 एक्टिविटीज को करना होगा. तो लेकिन कौन ऐसा है जो 64 एक्टिविटीज को कर सकता है? बहुत ही कठिन है. लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु उन सारी शिक्षाओं को समराइज करते हैं और समराइज करके 5 चीजों को करने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं. और वो 5 चीजें क्या हैं? उस दिन भी हमने चर्चा की थी. इन 5 चीजों को या इन 5ों में से किसी भी एक चीज को डिवोटी कस के पकड़ लेता है, बहुत टाइटली पकड़ लेता है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो स्ट्रांग अटैचमेंट है, वो निश्चित रूप से डेवलप होगा. तो वो चीजें क्या है? साधु संग, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मथुरा वास और डीटी वर्शिप. तो ये पांच चीजें महाप्रभु ने कहा अल्प, इनका अल्प थोड़ा भी एसोसिएशन कोई करता है इन पांच चीजों का तो निश्चित रूप से उसके हृदय में कृष्ण के लिए अटैचमेंट डेवलप होगी। क्योंकि जितने अब हम भगवत भक्ति की एक्टिविटीज को कर रहे हैं, डिवोटीज एसोसिएशन में आ रहे हैं, कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, डीटीज के दर्शन कर रहे हैं, तो इन सबका गोल क्या है? कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में एक स्ट्रांग अटैचमेंट डेवलप हो। अभी हमारे जो अटैचमेंट है वो कृष्ण के अलावा बाकी सारे चीजों में है, इसलिए हम अपने जीवन में बहुत अधिक स्ट्रगल या टेंशन या कष्ट महसूस करते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी, आसक्ति ही हमारे कष्ट का रूट है। तो अटैचमेंट हमें सुख दे सकती है और दूसरा दुख भी दे सकती है, लेकिन ऐसी अटैचमेंट हम यदि भगवान के भक्तों के प्रति करते हैं, ऐसी अटैचमेंट हम भगवान का नाम या कृष्ण की सेवा के लिए जागृत करते हैं तो वो हमें हमारे सुख का कारण बनती है। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने आसक्ति को कृष्ण में लगाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में जो सबसे पहली प्रेयर आती है क्वीन कुंती की, क्वीन कुंती एक आइडियल लेडी है, वो कहती है कृष्णा मेरा तो जो रिलेशन है वो दो फैमिली से है, एक मदर का फैमिली और एक हस्बैंड का फैमिली, तो मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मेरा नेचुरल अटैचमेंट दोनों फैमिली से है, यहाँ भी है वहां भी है, तो मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहती है क्वीन कुंती? कुंती कहती है कि मेरा ये जो अटैचमेंट है दोनों फैमिली के प्रति, उनको हे कृष्णा आप काट दो, क्या करो उस अटैचमेंट को आप काट दो और वो जो मेरी अटैचमेंट है वो कृष्णा आपके चरणों में हो, कहाँ हो? कृष्ण के चरणों में वो अटैचमेंट हो। तो इसलिए वो प्रेयर करती है कि हे भगवान मेरे आसक्ति आपके प्रति सदैव लगी रहे। तो इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये टीचिंग हमें देते हैं कि भगवान से अटैचमेंट डेवलप करना या कृष्ण को सीरियसली अपने लाइफ में लेना मीन्स कृष्ण के नामों को क्या करना, सीरियसली लेना। हम सोचते क्योंकि कृष्ण को सीरियसली लेना उसका मतलब ही है कृष्ण का होली नेम अपने लाइफ में सीरियसली लेना। इसी कारण से कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब यही है कि हम कॉन्शियस हो किसके प्रति, कृष्णा के प्रति, कृष्णा से जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके प्रति भी हम कॉन्शियस हो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जब हम प्रेयर करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति तो वो क्या कहते हैं, वंदो मुए सावधान मते। तो इसलिए भारत में अब ड्राइविंग करते तो सेंटेंस लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी वैसे ही है, स्पिरिचुअल लाइफ मतलब रेजर के एज के ऊपर चलने के समान है। तो इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटित हो सकती है। कभी कभी हम अपने स्पिरिचुअल एक्टिव लाइफ में देखते कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है कोई भक्त या फिर गायब भी हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, ड्रूम चला गया कहा, तो क्यों? तो हम कॉन्शियस नहीं होते अपने एक्टिविटीज के प्रति। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए कोई लंबा समय की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है बहुत कम समय में भी। तो लेकिन वो किस पर डिपेंड है कि वो व्यक्ति कितना सीरियस सिंसियर गंभीर है अपने प्रैक्टिस में। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो फॉलोवर हैं उनकी शिक्षाओं को पालन करने के लिए सीरियस हो, केवल ये ना हो कि वो केवल ढोंग कर रहे हो या दिखा रहे हो कि मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, प्रिटेंडिंग डिवोटी, या प्रभुपाद कहते थे शो बोटल डिवोटी। वो कहते थे कि ओल्ड एज में जब हम क्लिनिक में जाते थे तो तो डॉक्टर्स बोतल्स भर के रखते थे, हाँ, पीला, नीला, हाँ, ऐसे हरा, रेड, ऐसे बोतल्स क्लिनिक में डॉक्टर्स रखता था। तो उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती थी, वो क्या होता था, ओनली कलर। तो प्रभुपाद कहते थे ऐसे नहीं होना चाहिए, शो बोतल डिवोटी मीन्स उस बोतल के समान डिफरेंट कलर्स हमने धारण किए हैं, लेकिन अंदर क्या है, एम्प्टी है। जैसे आज मैं मॉस्क में गया था तो वहां में देखा कि सब कुछ क्या है, एम्प्टी है। तो वैसे ही ओडिया ओडियन लैंग्वेज में एक छोटी सी कहावत आती है जिसमें कहा गया है बक धार्मिक बिराड़ी वैष्णव। तो बक मीन्स बगुला और बिराड़ी का मतलब होता है कैट। तो जो बगुला है वो, क्योंकि जो बगुला है उसका कलर कैसे है क्लोथ्स का, बहुत वाइट, बहुत वाइट है, शार्प। और वो उसका भोजन है मछलियों को खाना, और वो लेकिन उसने देखा कि फूड को गैदर करने में पूरा दिन चला जा रहा है ना। व्यक्ति स्ट्रगल करता है, कपड़ा रोटी मकान, लाइफ इसी में चला जाता है, कपड़ा रोटी मकान, बाकी चीजें कहाँ ढूंढेगा। तो वो जो बगुला था बहुत हाइटेड था, बहुत वाइट था, लंबी सी चोंच थी उसकी। फिर उसने सोचा मैं दिन भर इतना स्ट्रगल करता हूँ कुछ मछलियों को पाने के लिए, क्या उपाय होना चाहिए, इजी वे, इजी अर्निंग चाहता है ना हर कोई व्यक्ति। तो उसने एक युक्ति सोची, उसने कुछ सुना होगा, लेक्चर अटेंड किया होगा कोई। तो उसने सुना कि इजी वे क्या है, डिवोटी बन जाओ। क्या बन जाओ? इजी वे है डिवोटी बन जाओ, तिलक लगाओ, कंठी धारण करो, क्लोथ्स पहनो और बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। तो बगुला बहुत डीप मेडिटेशन में ऐसे बैठा रहता था, और पहले सारी जो मछली और पानी के अंदर खड़ा रहता था, एक पाव के ऊपर, कितने पाव के ऊपर, एक पाव के ऊपर खड़ा रहता है। पहले दोनों पाव पर खड़ा रहकर मछली ढूंढता था, कोई मछली मिलती नहीं थी, सारी मछलियां दूर भागती थी, लेकिन अभी वो फिक्स हो गया, दृढ़ व्रता, फुल्ली डिटरमाइंड। तो वो वैसे खड़ा हुआ एक लेग पर, आंखें क्लोज, ध्यान योग का प्रोसेस है, आधी आंखें खुली होनी चाहिए, नोज के जो टिप है वहां आपको देखना चाहिए, वैसे वो क्लोज था। और उसने अनाउंस किया और उसने कंठी भी धारण कर ली, तिलक भी लगाया, क्लोज भी बिल्कुल प्रॉपर क्लोज उन्होंने पहने, और उसने अनाउंस किया कि अभी मैं डिवोटी बन गया हूं, पहले मैं नॉन वेज खाता था, अभी क्या खा रहा हूं, ओनली वेजिटेरियन। तो सारे मछलियों को पता चला कि अभी ये तो डिवोटी बन गया है, अरे अभी कुछ खाता नहीं है। तो सारी मछलियां वो भी उसके आसपास घूमने लगे। और उसने और एक अमेजिंग एक्टिविटी की थी, वो ये था कि वो पानी भी पीता था तो यहाँ जाली लगाई थी उसने, नेट। गलती से कोई चीज, मछली अंदर नहीं जानी चाहिए, इसको कहते कॉन्शियस। तो लेकिन जब ऐसे ध्यान मग्न होता था, मछलियों को लगा अभी हम सेफ हैं, हमें कोई खाएगा नहीं। तो लेकिन जैसे ही वो मौका ढूंढता था, जब ब्रेकफास्ट लंच डिनर का समय होता था, तो अपने आंखें ओपन करके देखता था, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, तो देखता था कोई नहीं देख रहा है, और मछलियों का इजी एक्सेस है उसके आसपास, तुरंत एक मछली उठाता था, खाता था, फिर जाली लगा के फिर मेडिटेशन। तो इसको क्या कहते हैं, बक धार्मिक, कि जो उन्होंने सुनी सोचा इतना इजी वे है, लाइफ रॉयल लाइफ है, क्या बन जाओ, डिवोटी बन जाओ। तो इसको कहते हैं बक धार्मिक, मतलब केवल प्रिटेंड करना या धोखा देना अपने आप को और दूसरों को भी। तो इसी को कहते शो बोटल डिवोटी, बक धार्मिक। और दूसरा और एक डिवोटी था वहां, कैट। जो कैट है उसने भी सोचा कि अमेजिंग वे है, कितना मैं चूहों के पीछे भागती रहूं, थक जाती हूँ पूरे दिन, इतने छोटे छोटे स्थानों में घुस जाते हैं, तो फिर वो कैट ने भी एक युक्ति आइडिया उसको आई, वो सलून में जाते और हेड शेव कर लेती है। क्या कर लेती है? हेड शेव। और सुंदर सा तिलक धारण करती है, कंठ में छोटी माला नहीं, कौन सी माला, बड़ी बड़ी, सबको दिखाई देनी चाहिए। और सब कुछ क्लोथ्स वगैरह चेंज कर दिए, और वो भी हाथ में बिड बैग लेकर बैठ गए, कौन, कैट। और वो क्या चांट करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चांटिंग हरे कृष्णा है कि नहीं, हरे कृष्णा का चांट कर रहे थे, लेकिन पूरा जो ध्यान है वो किस पर था, चूहों के ऊपर। तो मतलब हम कॉन्शियस हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस नहीं, कृष्णा नहीं है, कोई और चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो इस प्रकार से वो बिल्ली ने भी वही चीज फॉलो की जो किसने फॉलो की थी, उसने बक ने या बगुला ने। तो सारे चूहों को लगा कि अभी ये कैट माताजी कैट क्या बन गई है, डिवोटी बन गई है, अभी मैं, हमें तो सबको इजी एक्सेस है। तो सारे चूहे उसके आसपास उसके पाँव के पास घूमते रहते थे, और ये बिल्कुल धार्मिक हो गए थे ना, फुल्ली रिलीजियस डिवोटी, और वो कुछ इधर उधर भी नहीं देखते थे। तो सारे चूहों को लगा कि बेस्ट हमारा लाइफ है। लेकिन जब ब्रेकफास्ट का समय होता था, लंच का समय होता था, डिनर का समय होता था, तो उसने भी वही चीज की थी, उसने भी अपने मुंह में एक नेट लगाए थे। लेकिन जैसे समय होता था वैसे ही वो चूहे को उठाते थे और अपना फिस्ट बना लेती थी। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से कृष्ण भावना की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही नरोत्तम दास ठाकुर का ये जो सॉन्ग श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, वंदे मुए सावधान मते, तो वो कहते हैं कि हमें सावधान होना चाहिए अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हम केवल अपना समय इस प्रकार से गवाएंगे तो हमें भगवान के प्रति आसक्ति कभी भी नहीं होगी, भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट कभी भी नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक प्रैक्टिस को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और कॉन्शियस होकर प्रैक्टिस या कृष्ण की सेवा आदि करनी चाहिए। तो इसलिए कृष्ण को सीरियसली लेने का मतलब है कृष्ण के संबंधित हर चीज को भी सीरियसली लेना, नहीं तो कृष्ण हमें सीरियसली नहीं लेंगे, है ना। हम चाहते ना कि कृष्ण मुझे सीरियसली ले। हम किसी के साथ अपना रिलेशन डेवलप करते हैं तो हम चाहते कि वो व्यक्ति भी हमें सीरियसली ले। हम कहते वो सीरियसली नहीं ले रहा है मुझे, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो वैसे ही हम अपने लाइफ में चाहते हैं कि कृष्ण मुझे सीरियसली ले, तो उसी के लिए हमें कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको सीरियसली लेना होगा। और प्राइम प्रैक्टिस क्या है कलयुगा में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल हलो नास्तेव 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 गति रहित। चाहे जो मर्जी हो जाए, शास्त्रों का ये सिद्धांत है, क्योंकि महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने जब रूप गोस्वामी को 64 जो लिम्स या अंग बताए डिवोशनल प्रैक्टिस के, उसमें से 5 प्रमुख है, लेकिन उसमें से भी चैतन्य महाप्रभु को पूछने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य आए। भक्ति मत वो कहते हैं साधन श्रेष्ठ सुनिते हैल मन, वो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि इतने सारे प्रैक्टिसेस हैं, इसमें टॉप मोस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो सुनने में चाहता हूँ आपसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 9 चीजें बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कहा तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ क्या है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। और हमें हम हरि नाम को गंभीरता से नहीं लेते अपने जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान के नामों को ग्रहण करे। चाहे जितनी बार चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन चाहे किसी भी डिवोटी को दिए हो, चाहे सनातन गोस्वामी को दिए, रूप गोस्वामी को दिए, और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो बंगाल नवद्वीप से 4 महीने की जो टूर है यात्रा, उसके लिए सारे बंगाल के डिवोटी जगन्नाथपुरी आते थे, और चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन उन्हें मिलता था 4 महीने के लिए। और जब 4 महीने होते थे तो वो सारे डिवोटीज वापस नवद्वीप जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु से वो रिक्वेस्ट करते थे कि अभी हम वापस जा रहे हैं, कुछ एक्शन प्लान बताओ। क्या बताओ? एक्शन प्लान। अभी 4 महीने आपका एसोसिएशन किया, जगन्नाथपुरी में हम आए, लेकिन अभी फिर से हम अपने घर में जा रहे हैं, फिर से अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं, हमें क्या करना होगा बाकी दिनों में? तो चैतन्य महाप्रभु उनको 2 चीजें बताया करते थे, और वो कौन सी 2 चीजें थे? वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु फिक्स थे। तो इसलिए महाप्रभु की टीचिंग में हम इस चीज को प्राइमरली देखते हैं, प्रमुख रूप से, कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कृष्ण नाम, क्योंकि कृष्ण नाम से ही कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में भगवान के नामों का चैंटिंग करने के लिए प्रायोरिटी नहीं देते, बाकी सारी चीजों को करते हैं, सोचते जप में कब करूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन एक डिसाइपल को हमेशा सोचना चाहिए है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुरु ने सबसे पहले क्या हमें करने के लिए कहा है? चैंटिंग 16 राउंड। सबसे पहली कोई चीज हम स्पिरिचुअल मास्टर से लर्न करते हैं या स्पिरिचुअल मास्टर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो यही है, चैंट अटेंटिवली 16 राउंड। तो इसलिए और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो जो पहली चीज है चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्रा, वो हमें अपने लाइफ में सबसे पहले रखना चाहिए। सबसे पहले क्या रखना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। इसलिए हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में, क्योंकि एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप योगा मिशन में हो तो आप किस में एक्सपर्ट होने चाहिए? योगाज में, है ना। तो वैसे ही जो हरे कृष्णा मूवमेंट में है वो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किससे वो एक्सपर्ट हो? हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग में। कई बार हम मृदंग करताल आदि में बहुत गाते रहते लेकिन कहा जाए जब करो तो भागते हैं। ये हमारे सबके साथ है, जब सामूहिक कीर्तन होता है तो सब रहेंगे नाचेंगे गाएंगे, लेकिन जब बैठ के जप करने का समय आता है तो एक एक डिवोटी कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे हमें महसूस पता करना चाहिए कि हमारा जो सिचुएशन है डिजीज कंडीशन, कौन सी कंडीशन? डिजीज कंडीशन। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा सावधान रहते थे कि डिवोटीज अपने जो राउंड्स हैं हरि नाम है उसको गंभीरता से ले, शांत करें। इसलिए संप्रदाय में देखते कि जितने भी डिवोटीज हुए हैं वो किसी एक चीज के लिए बिल्कुल फिक्स हैं, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का चांट करने के लिए। आइडियल उदाहरण कौन है हमारे संप्रदाय में? हरिदास ठाकुर, जो अपने प्रीवियस लाइफ में लॉर्ड ब्रह्मा है, वो अपनी पोजीशन को छोड़कर हम्बल सिचुएशन धारण करके एक नीच मुस्लिम फैमिली में जन्म लेकर क्या चांट करना चाहते हैं? हरे कृष्ण मंत्र। तो ऐसे हरिदास ठाकुर की लाइफ को यदि हम हमेशा सामने रखते हैं और वो देखते हैं कि हरिदास ठाकुर बिल्कुल दृढ़ थे, बल्कि उनके जीवन में इतने स्ट्रगल आया, इतने कष्ट आए, माया देवी ने टेस्ट लिया और लक्ष्य हीरा जो प्रोस्टिट्यूट है उन्होंने भी टेस्ट लिया, और राजा ने उनको 22 बाजार में ले जाकर मारा, हमें कोई मारता भी नहीं है तभी भी हमसे चैंटिंग नहीं होता, तभी उनको 22 बाजारों में ले जाकर सबके सामने मारा जा रहा था, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर बिल्कुल फिक्स थे। और वो किस चीज में? वो कहते हैं खंड खंड होए जदि जाओ मोर प्राण, तबुतना वदने आमे छाड़ी हरि नाम। वो कहते हैं कि आप लोग मुझे चाहे जितना मारो, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पीसेस कर दो, लेकिन मैं क्या नहीं छोड़ूंगा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक कोई प्रिय डिवोटी थे, डियर डिवोटी, तो वो हरिदास ठाकुर थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए तो सारे डिवोटी फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी गए थे, तो सारे डिवोटीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि हाँ ये डिवोटी है, वे डिवोटी है, वो डिवोटीज है, महाप्रभु सबसे मिल रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर कहाँ है, किसके बारे में पूछा, हरिदास ठाकुर। क्योंकि जब हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं तो कृष्ण हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो कृष्ण हमेशा उस डिवोटी का चिंतन करते हैं, उस डिवोटी के बारे में सोचते रहते हैं जो सीरियसली और हम्बल एटीट्यूड के साथ कृष्ण के नामों का चैंटिंग करता है या उच्चारण करता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आप सब लोग यात्रा में आए हो, सब मुझे एक एक मिले, लेकिन ये हरिदास ठाकुर कहाँ है, तो किसी ने कहा कि हरिदास ठाकुर तो वहां दूर उस रोड में दूर से दिखाया कि देखिए आपको देख के वो आपको दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो महाप्रभु ने सबको साइड में किया, दौड़ते हुए हरिदास ठाकुर के पास गए, हरिदास ठाकुर को उठाया, उनका आलिंगन किया और हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे चैतन्य देव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा रहने के लिए स्थान दे दो, वहां मैं केवल आपके नामों का उच्चारण करूं। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली हरिदास ठाकुर के लिए एक शेल्टर कुटिया अरेंज करते हैं और हरिदास ठाकुर को कहते हैं अब निरंतर यह हरि नाम लो। और ऐसा एक भी दिन नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने नहीं जाते थे। एवरीडे चैतन्य महाप्रभु के शेड्यूल में प्रायोरिटी किसके लिए थी, तो वो कौन थे, हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु मॉर्निंग में उठ के सी स्नान या समुद्र स्नान करने के लिए जाते थे और फिर जगन्नाथ का दर्शन तीन बार से ज्यादा दर्शन करने के लिए जाते थे। और मॉर्निंग में जब जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे जगन्नाथ टेम्पल में, तो वहां से आते हुए हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लाते थे, किसी और के लिए नहीं, किसके लिए ले आते थे, हरिदास ठाकुर। वो भगवान श्री चैतन्य अपना ही प्रसाद लेकर स्वयं वॉक करते हुए उनके लिए जा रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कि किसी के हाथ में भेज दिया कि अरे चलो वो डिवोटी को प्रसाद भेज दो, नहीं, महाप्रभु क्या करते हैं, पर्सनली, मतलब चैतन्य महाप्रभु ऐसे डिवोटी को पर्सनल सर्व करते हैं, हरिदास ठाकुर जो हरि नाम के प्रति फिक्स थे। तो इस प्रकार से इस संप्रदाय में डिवोटी इस हरि नाम को अपना लाइफ एंड सोल बनाते हैं और वही चैतन्य महाप्रभु हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने जब पता चला कि हरिदास ठाकुर इस शरीर को बॉडी को त्याग कर जाने वाले हैं, उन्होंने अपना डेथ प्लान बताया। किसने बताया डेथ प्लान, हम सबको अपना डेथ प्लान लिखना चाहिए, है कि नहीं, शास्त्र में डेथ प्लान अवेलेबल है। भीष्म का भी क्या था, डेथ प्लान, कैसे मैं मरूंगा, और हरिदास ठाकुर ने भी आपका मरने से पहले डेथ प्लान, बाकी सारे प्लान बनाते रहते हैं लेकिन अपना डेथ प्लान की तैयारी हम नहीं करते। हमें जाके लिखना चाहिए कैसे मरना है मुझे, हाँ लिख ले, हम रियली कैसे मरना चाहता हूँ, हम पहले तो हम मरना नहीं चाहते फिर वो डेथ प्लान तो डिफरेंट है, हमें इच्छा मृत्यु हो तो कोई नहीं मरना चाहेगा, लेकिन वह हरिदास ठाकुर भीष्म और ऐसे अनंत डिवोटीज उन सब ने क्या किया, अपना डेथ प्लान कृष्ण को रिवील किया। और जब ऐसे सिंसियर डिवोटी के लिए कृष्ण सामने खड़े हो जाते हैं, भीष्म मरना चाह रहे थे तो सामने किसको कौन खड़ा था, कृष्ण। इतना उन्होंने अमेजिंग लेक्चर दिया किनको, पांडवास को। और यहाँ हरिदास ठाकुर ने भी अपने डेथ प्लान का वर्णन किया चैतन्य महाप्रभु को कि मैं कैसे मरना चाहता हूं, बल्कि वो इतने फिक्स थे, ओल्ड हो गए थे चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आए, कहते आप ठीक हो? कहते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है। एक तो उन्होंने कहा मेरी बीमारी क्या है, संख्या पूर्वक नाम जप मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये मेरी बीमारी है। अभी शारीरिक बीमारियां बहुत हो सकती हैं, स्पिरिचुअल डिजीज क्या है, चैंटिंग कंप्लीट न होना। प्रभुपाद एक बार लंदन में थे तो एक मैनेजर डिवोटी लेट नाइट हो गई, 11 बज गए, तभी भी उसकी एक माला बाकी थी, वो सोने जा रहा था, सो गया तो प्रभुपाद ड्रीम में आके कहते कितने राउंड सो गए उसको लगा एक ही माला तो रह गया है, कल कर लूंगा ना, ये छूट है। हम कहते ना राउंड्स बचे तो क्या करो, कल एक एक्स्ट्रा करो। तो प्रभुपाद उसके ड्रीम में आके उसको कहते हरि बोल कितने राउंड्स हो गए, कहते 15, उठो। प्रभुपाद कहते उठो अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 से पहले 1 राउंड चैंट करो। तो इस प्रकार से हम वो सिखाते हैं आचार्य। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरी बीमारी यह है कि मेरा जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और कितने राउंड्स चैंट करते थे, 192। वो सुन के हम हार्ट अटैक आ सकता है, 192 राउंड्स भी होते हैं, हमें तो 16 मीन्स गोवर्धन पहाड़ है हमारे सर में क्या है, गिरी गोवर्धन, बहुत हैवी है 16। तो लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा चैंटिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको ये माला पर जप करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी अपने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है, आप ऑलरेडी लिबरेटेड सोल हो। ये तो सब बाकी जो नए नए भक्त हैं उनको माला पर जप करने के लिए है, महाप्रभु ने कहा आपको नीड नहीं है। कहते नहीं, इतने वो दृढ़ थे। उन्होंने कहा फिर अपना डेथ प्लान उन्होंने बताया, क्या था डेथ प्लान, शायद मैंने उस दिन भी बोला होगा, डेथ प्लान क्या था कि हे चैतन्य महाप्रभु मैं इस प्रकार से अपने बॉडी को त्यागना चाहता हूँ, मैं आपके जो दो लोटस फीट हैं उनको अपने छाती पर रखना चाहता हूँ और अपने आंखों से आपके मुख कमल को देखना चाहता हूँ और अपने जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य, क्या श्री कृष्ण चैतन्य नामों का उच्चारण करके इस बॉडी को त्यागना चाहता हूँ। ये उनका डेथ प्लान है। अभी हमें भी सीरियस होना होगा, हमें भी अपने एक नोटबुक में लिखना होगा कि मेरा कैसे डेथ प्लान क्या है, तो कृष्ण अरेंज करेंगे फिर। तो इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर को वो कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बाध्य हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु नेक्स्ट डे अपने सारे डिवोटीज को लेकर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के सामने बैठकर वो उनके चरणों को अपने छाते में लेते हैं, मुख से श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते हैं और अपने शरीर को त्यागते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु, उससे पहले कन्वर्सेशन होता है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए बेस्ट एसोसिएशन प्रोवाइड किया था आपके रूप में, लेकिन अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, मुझसे मेरे संग को, आपके संग को दूर कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े डिवोटीज हैं, अब मैं तो एक छोटा सा, मेरे कोई योग्यता नहीं है, मैं तो एक छोटा सा डिवोटी हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि इस पृथ्वी में कोई चींटी मर जाती है तो किसको कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, हम सोचते हैं घर में कितनी चींटियों को मारते हैं। तो हरिदास ठाकुर अपने आप को एक चींटी समझ रहे थे कि देख चींटी मर जाए तो किसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास बहुत बड़े बड़े और पावरफुल डिवोटीज हैं। तो ये ह्यूमिलिटी थी हरिदास ठाकुर की। क्या शास्त्र कहते, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा उत्तम हैया अपना के माने अधम, मतलब डिवोटी का नेचर क्या है, उत्तम होकर भी अपने आप को क्या समझता है, अधम। ये उसका नेचुरल ह्यूमिलिटी है, वो प्रिटेंड नहीं करता या दिखाता नहीं है कि मैं बहुत हम्बल हूं। अहम बल एक तो होता है, अहम बल, दूसरा है हम्बल। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के इन भक्तों का नेचर है वो हम्बल है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर वो, और हरिदास ठाकुर इस प्रकार से फिक्स्ड है अपने नामों का उच्चारण करने के लिए। तो मतलब इस संप्रदाय में हम यदि डिवोटीज को देखें तो डिवोटीज हरि नाम को बहुत सीरियसली लेते हैं, डिवोटीज हरि नाम को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और हमें भी हरि नाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसे विष्णु प्रिया, उस दिन हम विष्णु प्रिया की चर्चा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु के विरह में सेपरेशन में चांट करते थे और अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, गंगा में स्नान करते थे और आकर जब करते थे और अपने रूम से बाहर नहीं निकलते दिन भर। वहां वर्णन आता है कि सूर्य और चंद्रमा भी विष्णु प्रिया को कभी देख नहीं पाते थे। अर्ली आवर्स में गंगा स्नान करते थे, आके आते थे और पूरे दिन चैंटिंग करते थे। और कितना कैसे चैंटिंग करते थे, चैतन्य महाप्रभु के चित्र हैं उसको सामने रखकर और या उनके जो चरण पादुका है, और उतना ही भोजन वो ग्रहण करते थे जितने वो राउंड्स करे। अपने साथ दो छोटे छोटे मटके पॉट रखते थे मिट्टी के और एक एक में थोड़े से चावल, तो एक राउंड होता तो एक क्या करते थे वो एक चावल का छोटा सा दाना ग्रेन उसमें डालते थे। और चार बजे तक, इवनिंग के चार बजे तक जितने राउंड्स और जितने ग्रेन्स चावल के इकट्ठा होते हैं राइस के, उतने ही वो कुक करते थे, चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते थे और वो चांट करते थे। तो ऐसा ऐसा उदाहरण हमें इंस्पायर करने के लिए ये महान डिवोटीज प्रकट करते। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना मठ या ये आंदोलन या मूवमेंट शुरू करने से पहले वो उन्होंने एक यज्ञ किया, शत कोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ नाम चांट किए उन्होंने। कितने साल के लिए? 10 ईयर्स, 9 ईयर और 8 मंथ समथिंग। तो 10 साल के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ही जगह रहे। हम मायापुर जाते हैं तो जो योग पीठ है चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, उसके सामने उन्होंने एक घास की झोपड़ी बनाई और उसी के अंदर रह के हर रोज 3 लाख या 1 लाख या 3 लाख नामों का जप करते थे। और ऐसे उन्होंने कंटिन्यूअसली 10 साल तक किया, और वो केवल गंगा स्नान करने जाते थे, अदरवाइज कंटिन्यूअसली चांट करते थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और खाते क्या थे, खुद ही थोड़ा सा खिचड़ी बनाते थे और उसी को ग्रहण करते थे। और बारिश के दिन आते थे तो बारिश में पानी गिरता था अंदर उस झोपड़ी से, तो छाता एक हाथ में रखते थे और क्या करते थे कंटिन्यूअसली,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो इसलिए भगवत भक्ति में हमें नाम व्रत, भगवान के नामों को अपने लाइफ में पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय बाकी और चीजें हमसे होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन एक हो सकता है कृष्ण का नाम उच्चारण करने का मौका या कृष्ण के नामों का स्मरण हमसे हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि एक डिवोटी को अपना जो चैंटिंग है हरि नाम है उसके प्रति बहुत फिक्स हो जाना चाहिए। कृष्ण के नामों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, तभी भक्ति क्या होगी, जॉयफुल होगी। नहीं तो भक्ति में जब हम नए नए आते हैं, जैसे डिवोटीज कहते ना, नया नया मुल्ला बहुत चिल्लाता है जब नया नया कोई ज्वाइन करता है तो बहुत जोर जोर से आवाज करता है, लेकिन थोड़ा क्या है कुछ दिन बीतते हैं तो आवाज छोटा हो जाता है। तो वैसे ही हम नए नए होते तो बहुत उत्साह होता है, इतना एंथुजियाज्म, लेकिन जैसे समय बीतता है तो हम बहुत स्लो हो जाते, स्लो मोशन या साइलेंट मोड में चले जाते हैं। कई बार डिवोटीज कौन से मोड में चले जाते हैं, साइलेंट मोड, चैंटिंग वगैरह होता नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति जॉयफुल तभी हो सकती है जब हम कृष्ण के नामों को सीरियसली ले, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम आगे सुसुखम कर्तमव्यम। तो कहते सुसुखम, इसको प्रैक्टिस करने में क्या है, सुसुखम। तो ये भक्ति जॉयफुल है, तो ये हमेशा जॉयफुल हो सकती है जब हम क्या करते हैं, कृष्ण के नामों को सीरियसली अपने जीवन में धारण करते हैं। और तभी ये कृष्ण नाम हम गंभीरता से ले सकते हैं यदि हम सदैव अपना जो संबंध है कृष्ण से जाने। हाँ, संबंध क्या है? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम भगवान के अंश है, इसको हमेशा बोलते हैं। मैं कृष्ण का हूँ इसको भूल जाते हैं, मैं किसका हूँ? मेरे माता पिता का हूँ, मैं अपने देश का हूँ, इस प्रकार से हम सोचते हैं हमेशा। हाँ, तो हमेशा सोचते मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं ना साउथ इंडियन हूँ, मैं उड़िया हूँ, ये सब हम नहीं है। हमारा संबंध जब इस सब चीजों से तोड़ेंगे, इसलिए तो प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता। जब तक इन डेजिग्नेशन से हम जुड़े रहेंगे तब तक प्योर डिवोशनल सर्विस एक ड्रीम है। प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है? ड्रीम है। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेन सेवनम भक्ति। तो इंद्रियों के स्वामी जो कृष्ण है ऋषिकेश, उनकी सेवा में नियुक्त होना, ये रूप गोस्वामी हमें सिखाते हैं। और हमारा संबंध ही है कृष्ण से, उनके हम दास हैं। इसलिए महाप्रभु को पूछा कि जीव का क्या संबंध है कृष्ण से, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कभी कभी दास नहीं, नित्य दास, कंटिन्यूअसली वो कृष्ण का सर्वंट है। ये हमारा असली धर्म है, यह असली स्वभाव है, यह असली पहचान है। इसी कारण से इसी से हमें हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ, इस भावना को हमारे दिमाग में हमेशा फिक्स रखना चाहिए। हाँ, तो फिर हम कृष्ण के नामों को गंभीरता से धारण कर सकते हैं, अन्यथा कृष्ण के नाम हमें बोझ महसूस होंगे। हरे नाम क्या होगा? टेंशन, टेंशन महसूस होगा। तो ये तभी संभव है जब हम नित्य रूप से भक्तों के संग में आते हैं, कृष्ण के संबंध को जानते हैं, और तब हम हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमें नेक्टर मिल सकता है। तो कहते ना भक्ति विद नेक्टर और भक्ति विदाउट नेक्टर। भक्ति हम करते हैं लेकिन अधिकतर क्या है, नेक्टर नहीं मिलता, विदाउट नेक्टर। इसलिए ये जो शब्द है कृष्ण कॉन्शियसनेस, या उसको हिंदी में कहते ना कृष्ण भावना अमृत, उसको हम काटते हैं कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना डैश अमृत। दूसरा है कृष्ण भावना डैश मृत। क्या है? एक एक साथ पढ़ते थे कृष्ण भावना अमृत, तो वैसे कृष्ण भावना डैश अमृत या कृष्ण भावना डैश मृत, तो दोनों में से एक हमारे साथ है। हाँ, तो भक्ति विथ नेक्टर या विदाउट नेक्टर वो हमें चूज करना है। तो विथ नेक्टर तभी हो सकता है, जैसे मैंने उस दिन कहा कि एक डिवोटी हमेशा तीन चीजों को ध्यान में रखता है, एक है साध्य, दूसरा है साधना या साधन, या तीसरा है साधु। तो साध्य मीन्स गोल और साधना मीन्स हाउ उस गोल को कैसे अचीव करें, उसके लिए जो प्रोसेस है, और साधु जिनसे हम इन दो चीजों के बारे में हमेशा लर्न करते हैं। तो एक डिवोटी हमेशा इन तीन चीजों को अपने सामने रखता है और वो फिर फिक्स हो जाता है। तभी हम अपनी जो भक्ति है विद नेक्टर के साथ हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए भक्ति विदाउट नेक्टर ही हो सकती है। इसलिए चांटिंग हमें अपना ये बनाना चाहिए, लाइफ एंड सोल। इसलिए रूप गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं वो क्या कहते हैं हरिनाम के बारे में, वो कहते हैं कि जब मैं ये हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करता हूँ, तो जब मैं उच्चारण करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कितने टंग्स चाहिए, हजारों हजारों, और ये हजारों टंग से जब हरे कृष्ण मंत्र चांट होगा उसमें इतना नेक्टर है कि उसको सुनने के लिए मुझे लाखों लाखों कान चाहिए। क्योंकि ये हरिनाम वो कहते हैं ये जब हृदय में चला जाता है, चेतः प्रांगणे, हृदय में चला जाता है तो सारे इंद्रियों की एक्टिविटीज शिथिल हो जाती, शांत हो जाती हैं। इंद्रियों से हमसे परेशान है ना, मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, सदैव कर्षण संघर्ष कर रहा है अपने मन और इंद्रियों के साथ। तो ये तभी संघर्ष खत्म हो सकता है जब हरिनाम कहाँ चले जाए, कान से यहाँ हृदय प्रांगण में, कोर्टयार्ड जो हार्ट है वहां जाए, हमारा हरिनाम यहाँ आता है और यहाँ से इसलिए कहते इतने साल हो गए हरिनाम लेते लेते कुछ हो ही नहीं रहा है। कहते हरिनाम हरे कृष्ण मंत्र में कुछ फॉल्ट है, फॉल्ट हरे कृष्ण मंत्र में नहीं है, फॉल्ट किसमें मुझ में है। तो इसलिए हमें हरे नाम यहाँ से लेकर दोनों कानों से सुनना चाहिए। दोनों कानों जब बीच में होगा ना फाइट कहाँ चला जाएगा, नीचे हृदय में जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते ये हरे नाम इतना स्वीट है, इतना मधुर है कि मुझे और टंग चाहिए, और कान चाहिए। हम अपने एक टंग से इतने परेशान है, हाँ कितना परेशानी है हमें, कानों से तो और प्रॉब्लम है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ये परफेक्शन है हरे नाम का उच्चारण करने के लिए। इवन श्रीमती राधा रानी अपने सखियों से मिलती हैं तो वो कहती हैं सखी केबा सुनाइला हरि नाम। श्याम ये सखी आप बताओ ये कृष्ण नाम क्यों मुझे सुनाई दिया, क्योंकि ये जब नाम मैं सुनती हूँ कानेर भितरे दिया मरम में पशी लोगो। वो कहती हैं अपने सखियों को ललिता विशाखा को कि जब ये कृष्ण नाम मेरे कानों में जाता है ना तो वो हृदय में चला जाता है और हृदय में जाकर मेरे साथ क्या होता है आकुल करेल मोर प्राण। मैं बहुत अनइजी महसूस करती हूँ, कृष्ण के प्रति बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट मुझे महसूस होता है। ना जाने कतेक मधु श्याम नामे आछे गो वदन छाड़ी तेना पारे। वो राधा रानी कहते अपने सखियों को हे सखी ये जो श्याम कृष्ण का जो नाम है इसमें इतना स्वीटनेस है कि मेरा ये मुंह या टंग उसको छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए तो राधा रानी सदैव कीर्तनीय, सदा हरि का कोई उदाहरण है तो कौन है, राधा रानी। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को धारण करते हैं और वो एग्जिबिट करते हैं कीर्तनीय सदा हरि कंटिन्यूसली चांट करते हैं। तो आगे वो कहती है जपिते जपिते नाम आवेश करी लोगो केमने पाईल सखी तारे। वो कहती है कि जैसे जैसे इस हरि नाम का मैं उच्चारण करती हूँ वैसे वैसे कृष्ण को प्राप्त करने की जो लालसा है, ग्रीड है, मेरे हृदय में डेवलप होता है। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने गुरु से कही। जब चैतन्य महाप्रभु का इनिशिएशन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ उन्होंने कहा किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। हे गोसाई, हे ईश्वरपुरी गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र मुझे दिया है, जब से इस मंत्र को चांट कर रहा हूं तब से मुझे कुछ होने लगा है, पागलपन हो बढ़ रहा है मेरा। तो गुरु बहुत खुश होते हैं। महाप्रभु कहते हसाए नाचाए मोरे कराय क्रंदन। ये हरे कृष्णा मुझे हंसाता है, नचाता है, रुलाता भी है। चांटिंग आत्मा का क्राइम क्या है, चांटिंग हरे कृष्ण मंत्र क्या है, चांटिंग हरे कृष्ण। आत्मा रोता है कृष्ण के लिए मीन्स वो कंटिन्यूअसली चांट करता है
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
इसको कहते हैं शास्त्र आत्मार क्रंदन, मतलब आत्मा का जो क्रंदन है वो ये है। इसलिए भक्ति योग क्या है, शास्त्र कहते भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। हाँ भक्ति योग है या केवल क्रंदन, भक्ति योग ही या भक्ति ही रियल वेल्थ है। और भक्ति क्या है, केवल क्रंदन है, कृष्ण के लिए केवल रोना सीखना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हमें केवल एक ही चीज सीखनी चाहिए और वो क्या सीखना है, रोना सीखना है। किसके लिए रोना सीखना है, कृष्ण के लिए। हम तो रो ही रहे हैं, माँ के गर्भ से थोड़ा सा बाहर आते तो लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, जोर से रोना शुरू करते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है और वो रोता नहीं है तो डॉक्टर को लगता है कि कुछ अनइजी है, कुछ तो गलत है, उसको जोर से प्रभु जी कहते थप्पड़ मारते हैं तो वो रुलाते हैं, उसे रुलाते तो रियलाइज करते कि हाँ तुम मटेरियल वर्ल्ड में आए हो सही स्थान में हो। और दिन और पूरा लाइफ रोते रहता है और फिर बूढ़ा हो जाता है तो भी रोते ही रहता है। हाँ तो रोना हमारा नेचुरल वो है, क्या टेंडेंसी है, नेचुरल है, लेकिन क्या करो उसको डाइवर्ट करो। किसके लिए रो, कृष्ण के लिए। और कृष्ण के लिए रोना सीखने के लिए ही हम भक्तों के संग में आते हैं। और कृष्ण के लिए रोने का मतलब ही है कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते कि हरे कृष्णा मंत्र मुझे हंसाता है, रुलाता है, नचाता है। हमारे साथ दो चीजें होती है, हंसाता है और नचाता है और भगाता है। हम भागना चाहते हैं जल्दी, लेकिन रुलाता नहीं। रुलाता है कि हाँ ये चांटिंग कब खत्म होगा। हम रोते कि नहीं कब फिनिश होगा ये 69 का। अब मैक्सिमम हम किसी चीज को देखते तो काउंटिंग जो काउंटिंग भीड़ है उसको ही देखते रहते कितने बच गए, बार बार ऊपर करते हैं। तो चैंटिंग तब हम रोना नहीं सीखेंगे यदि इस प्रकार से हम रहते हैं। तो चैंटिंग का रिजल्ट क्या है कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो नामे रुचि कम हो गई है तो उससे दो चीजें प्रकट हो जानी चाहिए, जीवे दया और वैष्णव सेवा। जीवे दया मीन्स जो हरि नाम में ले रहा हूं ये हरि नाम मैं दूसरों को देने का प्रयास करूं, और जो भगवान के जो प्रिय डिवोटीज हैं स्पिरिचुअल मास्टर आदि उनको सर्व करो। ये वास्तव में हरि नाम का रिजल्ट है। प्रभुपाद ने कहा हरि नाम का रिजल्ट मतलब यही है कि और अधिक हरि नाम का हम उच्चारण कर सके। तो इस प्रकार से शास्त्र हमें इंस्पायर करते हैं, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु और उनके जो डिवोटीज हैं, कि हम अपने हरि नाम या हरे कृष्ण मंत्र को अपना जीवन बनाए, लाइफ एंड सोल। इसलिए शास्त्र इवन सनातन गोस्वामी हमें 6 चीजें बताते हैं चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एक 5 मिनट में मैं उसको समराइज करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में चैंटिंग के बारे में कहते हैं, मन संवहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम निर्वदो जपसम पत्ति हेतव। वो कहते हैं पहली चीज है मन संवहरणम, मतलब कंट्रोलिंग द माइंड। सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है? माइंड। तो हम भगवान हम हमेशा रोज कहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन प्रेम के ऊपर हम कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज पर हम काम करते रहेंगे तो प्रेम डेवलप होगा, और वो क्या है? अटेंशन। अटेंशन इज द सीड ऑफ लव। अटेंशन पर हम फोकस, किस पे, किसके ऊपर अटेंशन करें? कृष्ण के नामों के ऊपर। तो उससे हम प्रेम इजिली अटेंड कर सकते हैं। तो हरि नाम हमारे पास आता है लेकिन हरि नाम का हम सदैव अनादर करते हैं। तो हरि नाम जब हम जप करते हैं तो हमें बहुत अधिक अटेंटिव होने का प्रयास करना चाहिए। कितना अटेंशन, जैसे जो बीर अकबर थे, राजा थे, अकबर अपना कार्य करते करते बेचारे थक गए। उन्होंने सोचा थोड़ी सी शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। वो एक मॉस्क में चले गए, वहां गए, कुरान उठाया और कुरान को पढ़ रहे थे, और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रख दिए मॉस्क के बाहर, मस्जिद के बाहर, कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, मुझे बहुत शांति की आवश्यकता है, मैं केवल कुरान पढ़ना चाहता हूं। तो बैठ गए कुरान। उस समय एक जो लड़की है उसको पता चला, वो भी दौड़ते दौड़ते आई, और कैसे तो उस मॉस्क में सिक्योरिटी गार्ड्स उसको ना देके ऐसे घुस गई। बहुत पागल की तरह दौड़ रही थी वो, एक पागलपन उसके दिमाग में सवार हो गया था। दौड़ते दौड़ते उसको दिखाई भी नहीं दिया, अंदर भी चली गई, और उसने देखा भी नहीं कि कोई वहां पड़ रहा है या बैठा है, कुछ नहीं। वो अकबर के ऊपर से जाके खुद पड़ी, उसकी जो कुरान है हाथ से बहुत दूर फेंकी गई, और वो ढूंढ रही है, घूम रही है। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड्स आते कि पकड़ो उस लड़की को। तो उसको पकड़ा और उसको अकबर के सामने लाया, और अकबर ने पूछा, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा था? कुरान पढ़ रहा था। आप मेरे ऊपर से चली गई, कुरान एक ओर गिरी, मैं एक ओर गिरा, फिर भी तुम्हें कुछ ये नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो वो लेडी कहते हैं, वो पूछते कि क्या ऐसा पागलपन है? उसने कहा कि मुझे पता चला था कि मेरा जो लवर है, प्रेमी है, वो यहाँ आया है, उसको मैं ढूंढने आई थी, और इतनी फोकस हो गई थी उसमें, इतना फुल्ली ना मग्न हो गए थे। तो लेकिन उसने पूछा और उसने कहा अकबर ने कि तुम्हें तो दंड देना चाहिए और बड़ा रस्सी तुम्हारे गले में बांधकर फांसी देने के लिए कहता हूं मैं, ताकि बड़े रस्सी से धीरे धीरे मर सकती हूँ, पतली रस्सी से एकदम मर जाओगी। तो उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे बताइए आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो कुरान पढ़ रहा था। तो उस गर्ल ने कहा कि देखो इस भौतिक जगत के लवर प्रेमी के लिए मैं इतनी मैड हो गई थी और इतनी फोकस्ड हो गई थी, इतने अटेंटिव हो गए थे कि मुझे कुछ भी ये नहीं रहा, लेकिन तुम तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम बिल्कुल फोकस नहीं थे। ये जो परम प्रेमी है वो अल्लाह या जो भी कृष्ण है उनके प्रति कितना अधिक फोकस्ड अटेंटिव होना चाहिए। तो अकबर की आंखें खुल जाती हैं, वो उसको छोड़ देता है, वो ये बात उसके हृदय में लग जाती है। इसी प्रकार से हम जब कृष्ण नाम चांट करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, सर्वसाधारण वस्तु नहीं है, तो हमें अधिक फोकस होना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। जहां जहां हमारा मन जा रहा है उसको पकड़ पकड़ के खींच के वापस ले आओ और उसको लगाओ। ऐसे नहीं कि ये मन लगेगा, जैसे पता चला कि ये भाग रहा है उसको पकड़ के फिर से लाओ और हरि नाम में उसको लगाओ। इसलिए प्रभुपाद को पूछा कि माइंड कंट्रोल करना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा क्या कोई यूज नहीं है माइंड को कंट्रोल करने का, बेस्ट है क्या करो, दो चीजें करो, क्लियरली उच्चारण करो और कृष्ण नाम को श्रवण करो, सुनो, वो इजी वे है। दूसरी चीज सनातन गोस्वामी कहते शौचम, शौचम मीन्स क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस कैसा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजें के लिए, और ये ब्राह्मण का क्वालिटी है, क्योंकि क्लीनलीनेस हमारे कॉन्शियसनेस पर या चेतना पर प्रभाव डालता है और जिससे हम मोड ऑफ इग्नोरेंस या पैशन में चले जाते हैं। और फिर जब कोई व्यक्ति पैशन और इग्नोरेंस में है तो उसके लिए चांट करना सबसे अधिक स्ट्रगल होता है, सबसे अधिक कठिन हो जाता है। तो इजी होता है जब हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, तो शास्त्र भी हमें समझ में आते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं, चांटिंग में भी हमारा मन लगता है। इसलिए मॉर्निंग आवर्स चांटिंग के लिए बेस्ट है, नून या इवनिंग में हम चांटिंग हमसे बहुत कठिन होती है, लेकिन जब हमारा हरि नाम में मन लगता है तो फिर टाइम कोई भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शास्त्र कहते हैं विशेष रूप से सनातन गोस्वामी कि हमें अंतरंग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का ध्यान रखना चाहिए क्लीनलीनेस का। और विशेष रूप से क्योंकि जैसा चैतन्य महाप्रभु कहते विषैर अन्न खैल मलिन है मन, मलिन मन हैल नहे कृष्णेर भजन। तो जब हम प्रसाद के अलावा कोई चीज खाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर होता है और हमारी चेतना पर होता है, और फिर कृष्ण का स्मरण करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि कैसे तो मैं क्या करूं, ओनली कृष्ण प्रसाद ग्रहण करूं। इसलिए गीता के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध है तो बाकी सारी चीजें शुद्ध हो सकती हैं। सरलता से कृष्ण का स्मरण हमसे हो सकता है, और इंटरनल इंटरनल क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं और जो भी आध्यात्मिक गुरु ने हमें सेवा दी हरे कृष्ण मंत्र चांट करने की उनको चांट कर सकते हैं, डेली रीडिंग करें, कीर्तन सुनने का प्रयास करें, कृष्ण के लिए कुछ प्रेयर्स रिसाइट करें। तो ये क्या है, इंटरनल क्लीनलीनेस हम मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी चीज सनातन गोस्वामी कहते हैं मौनम, मौनम मतलब कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक हमें बोलना चाहिए, और हम मैक्सिमम अधिकतर हमें एक दूसरे की निंदा करने में अधिक आनंद आता है, या कृष्ण के अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें हम बहुत अधिक उत्साहित होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है जपा पर जब हम भगवान के भक्तों को उनकी निंदा आदि करते हैं, तो वो सबसे गहरा इफेक्ट हमारे चैंटिंग पर है, जिससे हमसे चैंटिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है और कुछ दिनों में तो वो चैंटिंग हमारे हाथ से छूट जाता है, ब्रेकेज ब्रेक होने लगता है, कई दिनों तक फिर हम चांद नहीं कर पाते। और जो चौथी चीज नरोत्तम दास कहते हैं सनातन गोस्वामी, मंत्रार्थ चिंतनम, मतलब मंत्र का जो मीनिंग है उसके बारे में हमें मेडिटेट करना चाहिए। तो मंत्र का मीनिंग क्या है? हाँ, कृष्ण के लिए। हाँ, अब हम प्रेयर कर रहे हैं कि हे श्रीमती राधिका, हे कृष्णा, आप मुझे आपकी सेवा में एंगेज करो। और बेस्ट मेडिटेशन क्या है? प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे आप स्वीकार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें शिक्षा अष्टकम में दिया है, इस एटीट्यूड से हम चांट करें, अये नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवामुदो। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो इस भौतिक संसार में गिर पड़ा हूं, कृपया मुझे आप प्लीज स्वीकार करो। इस एटीट्यूड को जब हम धारण करते हैं तो हरि नाम हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। और पांचवी चीज कहते हैं कि चांटिंग करने में हमें बहुत ये नहीं होना चाहिए, शांत होकर जप करना चाहिए। मतलब हम चांट करते कि नहीं, अभी मुझे हमेशा भाग दौड़ रहती है ना, मतलब कि मुझे अभी प्रसाद पाना है तो मुझे इसलिए जल्दी जल्दी जप करता हूं। ध्यान कहाँ है? प्रसाद में, ताकि माला खत्म हो जाए। तो मतलब इस एटीट्यूड से चांट करते हैं तो फिर हम कभी भी शुद्ध नहीं होंगे। और जो छठी चीज है वो कहते हैं कि हमें हमेशा चांटिंग करने के लिए ईगरनेस दिखानी चाहिए, एक लालसा हमें जागृत करनी चाहिए, और तभी फिर हम हरि नाम का सरलता से उच्चारण कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। जब हम इनको फॉलो करते हैं अपने लाइफ में तो हम देखते हैं कि हरि नाम में परिवर्तन आता है। और हरि नाम आध्यात्मिक गुरु की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है। तो जब स्पिरिचुअल मास्टर को हम सर्व करते जो कहा है, तो कृष्णा हमारे पास दौड़ के स्वयं आते हैं। अब देखो शबरी के बारे में हम सोचते हैं, शबरी कोई सुंदर लेडी नहीं थी, वो एक आदिवासी फैमिली की एक स्त्री थी और वो बकरियां वगैरह चराने जाती थी। लेकिन जब उसकी एज हो गई, मैरिज की एज, तो उसके फादर ने सोचा इसका मैरिज करता हूं, और एक दूल्हा भी ढूंढा। और मैरिज के लिए फिस्ट में भोजन क्या देने वाले थे उनके फादर, 100 या 1000 बकरे लाए थे जिनको काट के सर्व करना था। तो ये शबरी ने सोचा कि मेरे मैरिज में ये हो रहा है, उसके हृदय में बहुत दया आई, कंपैशन। उसने सोचा ऐसा मैरिज नहीं करूंगी मैं। तो वो अपने घर को छोड़कर दौड़ती है फॉरेस्ट में, जंगल में जाती है, और वो सोच रही थी कि मुझे डिवोटीज का शेल्टर लेना है। तो कई सारे ऋषि मुनियों के पास गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप तो नीच परिवार में जन्म लिए, हम आप अपना शिष्य नहीं बनाओगे। लेकिन एक ऋषि थे जिनका नाम था मातंग, तो मातंग ऋषि ने उनको अपना डिसाइपल बनाया, डिसाइपल बनाया, और इतनी हम्बली सर्व कर रहे थे शबरी। मातंग ऋषि का आश्रम क्लीन करना, गोबर से लेप करना, तुलसी को सर्व करना, उनके लिए पानी लाना, हर सर्विसेज करते थे, पूरे दिन लगे रहते थे। फिर मातंग ऋषि जो बहुत ओल्ड हो गए और वो शरीर त्यागने वाले थे, तो इन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, मुझे अपने लाइफ में क्या करूं मैं जिससे कृष्ण को मैं अचीव कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि आप क्या करो, यहाँ रह के इस आश्रम की टेक केयर करो, यहाँ मेरी सेवा में लगी रहो, और कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर निश्चित रूप से होगी, और भगवान राम जरूर आएंगे यहाँ। तो उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, बहुत सारा वो कन्वर्सेशन है उनका, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे मिले उसको फॉलो करने के लिए ये शबरी रोज, क्योंकि भगवान राम इस आश्रम में आने वाले हैं, लेकिन कब आने वाले वो पता नहीं है, एवरीडे। वो यंग थे उस समय, लेकिन ओल्ड होने तक वो कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल मास्टर ने जो सेवा दी वो करती रहे, कोई डाउट नहीं आया, छोटा भी थोड़ा डाउट उसे नहीं आया, कंटिन्यूअसली सर्व कर रहे थे, और रोज क्लीनिंग करना। और भगवान आने वाले हैं तो रोज वो बेर तोड़ के लाते थे और वो चेक करते जो क्या हो, स्वीट हो, कृष्ण के लिए बेस्ट चीज है। तो वो ओल्ड हो गई तो भी तब तक भगवान राम नहीं आए। एक दिन वो पानी लाने के लिए जा रही थी, वो पंपा सरोवर में, दक्षिण साउथ इंडिया में है ना पंपा सरोवर, वहां जल लाने गई तो किसे साधु को लगा ये कहां ये आदिवासी हैं, उन्होंने एक पत्थर फेंक के मारा। उन्होंने सोचा, उस साधु ने सोचा ये सरोवर को वो कर रही है, अशुद्ध कर रही है। जैसे पत्थर मारा तो उसके शरीर को लगा तो वहां से ब्लड निकलता है और एक बूंद गिरता है पंपा सरोवर में तो पूरा जो वाटर है वो रेड हो जाता है, ब्लड के कलर का होता है और वो जाते दुखी होकर अपने आश्रम में। तो सारे ऋषि मुनि जहां वहां तपस्या कर रहे थे पानी पीने के लिए वहां आना पड़ता था उनको, स्नान करना, आचमन करना। उन्होंने सोचा ये पूरा सरोवर अबे अनक्लीन अशुद्ध हो गया है, क्या करें। तीन ऋषियों को पता चला कि भगवान राम वनवास में वहां दूर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं, वो यदि आचमन करे तो ये ठीक हो सकता है। तो भगवान राम आए, उन्होंने आचमन किया तो भी कुछ हुआ नहीं। डिवोटी उन्होंने ऋषियों ने कहा आचमन नहीं, अभी आप क्या करो, स्नान ही कर लो। स्नान भी किया तो कुछ चेंज नहीं। तो राम ने पूछा ये किसके कारण हुआ है। हाँ तो उन्होंने कहा किसके कारण, एक शबरी। उन्होंने कहा उसको बुलाओ। शबरी को जैसे पता चला श्री राम आ गए हैं नजदीक तो अपने आश्रम में सारी चीजों को छोड़ के दौड़ने लगती है उनसे मिलने। दौड़ते दौड़ते उनके चरणों के जो धूल है, मिट्टी जो लगी है, वो थोड़ी सी मिट्टी जाकर उस सरोवर में गिरती है तो क्विकली वो सरोवर शुद्ध जल का हो जाता है। भगवान राम सोचते हैं उसके बारे में और फिर वो भगवान राम उसके साथ जाते हैं और जाते तो इतना वो उनको स्वागत करती है, बिठाने के लिए आसन देती है और उनको क्या ऑफर कर रहे थे, बेर। और वो पहले चेक कर रही है और फिर दे रही है। तो लक्ष्मण को बड़ा वो लगा, ऑड लगा। लक्ष्मण उसके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। फिर लक्ष्मण ने सोचा ये लेडी क्या कर रही है। तो लेकिन जब ये भावना, सेवा की भावना लक्ष्मण ने समझी तो लक्ष्मण भी सोचने लगे कि मुझसे अधिक भगवान राम को ये तो शबरी ये कर रही है, प्रसन्न कर रही है। तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है सर्विस का, जिसके कारण भगवान राम अत्यधिक प्रसन्न है, इसकी चर्चा करोड़ों करोड़ों सालों के लिए लोग क्या करेंगे और उसे सीखेंगे। तो शबरी से जीवन से हम सीख सकते हैं कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने जो उनको सर्विस दी थी उसको करने के लिए हमेशा तैयार थी। उन्होंने सोचा नहीं कि अरे अभी नहीं होगा तो कभी नहीं, उन्होंने सोचा कि क्विक चाहिए मुझे रिजल्ट। वो करती रहे, लगी रहे ओल्ड एज तक और भगवान राम स्वयं आते हैं। इसलिए हरि नाम ये आध्यात्मिक गुरु की सर्वप्रथम सेवा है और तब हम इसमें लगे रहेंगे कंटिन्यूअसली और बेटर होने का प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। तो ये कह के मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम संकीर्तन के, हरे कृष्ण महामंत्र के, श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।
कोई प्रश्न है,
कोई क्वेश्चन नहीं होगा।